તારીખ 1/2/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 438 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 156 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
बीच में से लेना है ऐसा प्रश्न पूछा है सुभाग भाई ने कि जगतवासी जीव को राग द्वेष दूर होने का पता नहीं चलता, परंतु जो महान पुरुष है वे जानते हैं कि इस महात्मा पुरुष में राग द्वेष का अभाव या उपशम है. ऐसा लिखकर आपने शंका की मैंने प्रश्न किया कि जैसे महात्मा पुरुष को ज्ञानी पुरुष अथवा दृढ़ मुमुक्षु जीव जानते हैं, वैसे जगत के जीव क्यों न जाने हैं? किस कारण से नहीं जानते हैं? मनुष्यादि प्राणी को देखकर जैसे जगतवासी
नासीदास का नाटक संसार में इस दोहा में जीव के लक्षण बताए हैं. समझाने के लिए उसने पहला लक्षण लिया ध्रुवत्व, अपना जो स्वरूप जैसा है वैसा अनादि अनंत एक रूप बिना भाव वैसा का वैसा रहता है. उसमें कभी प्रकार का फर्क नहीं होता. ज्ञान आनंद आदि गुण से संपन्न है और परिपूर्ण है, तो ज्ञान और सुख के लिए ये अपेक्षा भी ऐसा निरपेक्ष तत्व और परिपूर्ण स्वरूप वैसा का वैसा हमेशा रहता है. इसलिए इसका नाश होने का भी कोई भय नहीं है, इसका कोई कमजोर होने का भी भय नहीं है. और उस स्वरूप से सुंदर है, रम्य. मैंने उस स्वरूप से ही सुंदर है, उसमें स्फूर्ति होती है, जीवंतपना होता है और उसकी विद्यमानता से ही सुंदर सुंदर दिखता है. प्राकृतिक सौंदर्य है या किसी प्राणी की सुंदरता है, की सुंदरता है, जीव की विद्यमानता के कारण से होता है. तीसरा धर्म लिया भूता धर्म यानी मुख्यपना, कि अपनी विद्यमानता से ही सब कुछ जाना जाता है. सभी पदार्थ के ज्ञान में जानने वाला ही मुख्य रहता है और मुख्य रहना चाहिए. ऐसा एक सत्ता धर्म है, उसको जानने से अपना मुख्यपना रहता है और अपनी मुख्यता रहने किसी भी इंद्रिय की मुख्यता नहीं होती, अन्य पदार्थ की मुख्यता नहीं होती, और अन्य पदार्थ की मुख्यता नहीं होने अन्य पदार्थ के प्रति व्यामोह, राग द्वेष आदि प्रकार के दुखमय परिणाम वो नहीं होते हैं। ये तीन धर्मों के में स्वाध्याय चला है अपना दो दिन में। कहते हैं कि ज्ञायकता धर्म है, प्रगट ऐसे पदार्थ और जीव ये जिस कारण से भिन्न पड़ते हैं, जीव का नायकपणा नाम के गुण है, का गुण है। जीव जानता है, ज्ञान इसका एक गुण, इसका स्वरूप है। वो ज्ञान लक्षण से क्या फायदा है कि जड़ और जीव की भिन्नता स्पष्ट रूप से नजर आए। फायदा उसमें लाभ वो है कि जीव ना नायकपणा से भिन्नता कभी नहीं किया, कभी नहीं कर रहा है, कभी किया भी नहीं, और जड़ पदार्थ से देहात से अपनी अभिन्नता का अनुभव किया है, और यही कारण से वो दुख रहा है। आदि से एकत्व बुद्धि जीव आदि से इसी कारण से अनेक प्रकार के विभाव भी होते हैं, दोष होते हैं, दोष और दुख एक सिक्का की दो बाजू होने साथ ही रहते हैं, तो दुख होता ही है। ऐसे अनादि दोष को मिटाने के लिए जीव का नायक भाव मुख्य भिन्न करने के लिए साधन होता, ज्ञान ही साधन है। मुमुक्षु जीव को अपने आत्मकल्याण में या आत्म सुख की प्राप्ति एक ज्ञान ही साधन, दूसरा कोई साधन नहीं। दुआ में दूसरे दूसरे लक्षण कहे हैं, फिर भी ज्ञान की प्रधानता है, क्योंकि इससे वो भिन्न जाना जाता है, और अनादि से भिन्न जाना नहीं यही सभी प्रकार की उत्पत्ति का कारण हुआ। दूसरे लक्षण तो अन्य पदार्थ में भी है, ध्रुव रहे तो पुत्र अपने स्वरूप से ध्रुव है, अस्तित्व है, बल भी अपने स्वरूप काल अस्तित्व रखता है। एक ज्ञान ऐसा लक्षण है कि जिस कारण से जड़ और चैतन्य की भिन्नता जाती है या अनुभव भी जाती है, यथार्थ ज्ञान नहीं होने के ज्ञान तो सब चीज में है ही, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं है तो विपरीत ज्ञान है। विपरीत ज्ञान को ही अज्ञान बोलने में आता है। अज्ञान में न ज्ञान का अभाव उतनी सी बात नहीं है, मुख्यतः तो अज्ञान कहने से विपरीत ज्ञान की बात चल रही है। तो विपरीतता क्या है, कम शरीर आदि देह को जानते हैं, अपने रूप जानते हैं, ये शरीर मेरा है, सुंदर है तो मैं सुंदर हूँ, ये कुरूप है ये मोटा है तो मैं मोटा हूँ, ये दुबला है तो मैं, इसका वजन घट गया तो मेरा घट गया, इसका बढ़ गया तो मेरा वजन बढ़ गया। इतना एकत्व और अपनत्व कर रखा है और हो रहा है कि इसी कारण से सभी प्रकार के विभाव उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, यही कारण है। फिर क्या होता है कि इस देह के अनुकूल प्रतिकूल जो भी होते हैं, जिसके जितने संबंध वाले होते हैं, सबसे अपनत्व कर देता है। जैसे माँ बाप भाई बहन पुत्रा जितने भी संबंध रखने वाले हैं, उसमें भी अपनत्व करता है। मेरे हैं मकान में रहता है उसमें अनुकूलताएं होती, उसमें अपनत्व करता है। जिस समाज में जिस सर्कल में रहता है उसमें जितने अनुकूल रहते हैं सब में वो करता है, अपनत्व करता है। तो उसी कारण से एक देह को, देह में आत्मबुद्धि वो तो पूरी दुनिया को बता लेता है, अपने अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर लेता है और प्रकार का विभाव करके दुखी होता है, दोष करके दुखी दुखी रहता है। ये दोष मिटाने के लिए एक ज्ञानी साधन, ज्ञान से ही भिन्न भिन्न जाना जाता है कि जड़ है, मैं ज्ञान स्वरूप में हूँ, मेरे ज्ञान में किसी की मिलावट होती नहीं है। कोई चीज आती है तो मुझे मिलती नहीं है, कोई चीज आती है तो मेरे में से ज्ञान। प्रकट ऐसे जड़ पदार्थ और जीव ये जिस कारण से भिन्न पड़ते हैं, भिन्न पड़ने में एक ज्ञानी लक्षण से भिन्न, ज्ञान से ही भिन्न जाने जाते हैं, ज्ञान से ही भिन्न अनुभव किए। ऐसा गायकपणा में ज्ञान नाम का गुण है। कोई भी समय में, किसी भी समय में गायक रहित पने से यह जीव पदार्थ किसी को भी अनुभव में आ सकता नहीं, ज्ञान रहित पदार्थ में नहीं आ सकता। राग का नाश होता है मित्रता होने पर, लेकिन ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। एक समय के लिए ज्ञान को बंद भी नहीं कर सकते, जानने को तुम जानना बंद कर दो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका स्वरूप है। तो उसका अभाव कभी हो सकता नहीं है। किसी भी समय में ज्ञायक रही से यह जीव पदार्थ कोई भी अनुभव नहीं कर सकता, और यह जीव नाम का पदार्थ पदार्थ के सिवा दूसरा कोई भी पदार्थ गायकपना संभव नहीं है। जीव के अलावा छोड़ करके दूसरे में गायकपना संभव नहीं है। जीव में यही गुण है, बाकी पांच द्रव्य तो अजीव है, उसमें ज्ञान नहीं है। यहां से फर्क पड़ता है, जो भिन्न पड़ता है वो ज्ञान से ही भिन्न पड़ता है। ज्ञान रहे वो अजीव, ज्ञान रहे वो जीव, तो अनुभव प्रकाश में आता है। ज्ञान नाम क्या क्या हूं, हूँ मैं आत्मा, ज्ञान 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 क्या क्या हूँ, दृढ़ भाव ते सम्यक्त्व है। इधर में वो किया था अनुभव प्रकाश किया था। यह जीव नाम के पदार्थ, जीव नाम का पदार्थ के सिवा दूसरा कोई पदार्थ में ज्ञानपना संभव हो सकता नहीं, ऐसा जो अत्यंत अनुभव का कारण। ज्ञान क्या है? अनुभव का कारण है। ज्ञान से अनुभव कर सकते हैं, दूसरा कोई अनुभव करने में काम में नहीं आता। ऐसा जो अत्यंत अनुभव का कारण नायकता, यह लक्षण जिसमें है, यह पदार्थ तीर्थन करने जीव कहा। पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को तीर्थन करने जीव कहा है, ज्ञान से जीव कहा है। अनादि आनंद तो पुद्गल भी रहता है और भी द्रव्य रहते हैं, लेकिन ज्ञान से उसको जीव कहा है। सैतालीस शक्ति है संसार में, शुक्राचार्य ने परिशिष्ट लिखा है उसमें। उसमें पहली शक्ति जीवत्व शक्ति दिया है वर्णन कर, और जीवत्व शक्ति में क्या दिया है? प्राण से जीवत्व होता है, प्राण से किया जाता है। तो जीवत्व शक्ति में प्राण कौन है? कि ज्ञान और दर्शन जिसका प्राण, ऐसे जीवत्व शक्ति दिया है। ज्ञान दर्शन जिसका प्राण है, ऐसे जीवत्व शक्ति है। जबकि ज्ञान एक भिन्न शक्ति है, दर्शन एक भिन्न शक्ति है। फिर उसमें जीवत्व शक्ति का प्राण ज्ञान दर्शन दिया है।
ज्ञान दर्शन
है,
ये
जीव
वास नहीं आया,
विश्वास नहीं है। और अनादि से शरीर जितना माना भी है, स्वीकार भी कर लिया है, तो जो झूठा स्वीकार है वो छूटे तब तो सच्चा स्वीकार हो गया ना। दो विरुद्ध निर्णय एक साथ तो रहेगा नहीं। जो झूठा निर्णय है उसका नाश होने सच्चा निर्णय हो सकता है। सभी निर्णय रहे और सच्चा भी रहे वो करने वाला नहीं, तो झूठा पाना भी। निर्णय कर सकते हैं मनुष्य जीव, किस बात को समझ करके निर्णय करता है? मैं अपने शरीर को अपना रूप मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, तो फिर कहने वाला सही कह रहा है। ज्ञानी के वचन पर प्रतीति क्यों आती है? कल बात चले ना, ज्ञानी के वचन पर प्रतीति क्यों आ रही है? कि हम हमारे तरीके से जो जीवन जीते हैं उसमें हम खुद क्या कर रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, उसका भान हमको नहीं है। ज्ञानी बताते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो, जब मिलान करते हैं तो पता चलता है तुम देह में अपने को कर रहे हो। अगर देह ते वो तुम्हारा स्वरूप था तो कभी मिटता नहीं, जाता नहीं, अलग होता नहीं। ये तो अलग हो ही जाता है, वो तो रोजाना सबको मालूम पड़ता है। आज वो मरा, कल वो मरा, उसका देह का संस्कार हो गया। जब देह भिन्न है फिर भी हम भिन्न नहीं मान रहे हैं, ये हमारी गलती है। वो गलती ज्ञानी बताते हैं तो उसके वचन पर प्रतीति आती है, विश्वास आता है। ये गलती हम कैसे कर रहे हैं? मनुष्य में सूक्ष्म का, बुद्धि का अहम होता है, सबको होता है। मैं कोई बुद्धि वाला हूँ? लेकिन इतनी बड़ी गलती करता है वो बात जब उसके ध्यान में आती है, लगता है कि ज्ञानी मेरे से भी बुद्धि है। इतनी बड़ी भूल मैंने कैसे कर दी? शरीर इतना जड़ पदार्थ, जड़ परमाणुओं का पिंड है और मैं चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। जाति से विरुद्ध जाति के पदार्थ है, एक ज्ञान रहित है, एक ज्ञान सहित है। बिल्कुल भी जातीय पदार्थ होने पर भी हम दोनों को एक मानकर जीते हैं, कितनी बड़ी गलती है। और यही कारण से दुखी होते हैं।
ये बात तो अज्ञानी भी कहता है, का बात तो अज्ञानी भी कहते हैं।
दूसरी बात वो चली थी कि ज्ञानी के वचन में अपूर्वता कैसे लगती है। इसमें टोन अलग है, ज्ञानी का टोन अलग है, अज्ञानी का टोन अलग है। रुपया तो रुपया है, चांदी का है और एक कलाई का है, एक असली है एक नकली है। नकली कभी अच्छा भी दिख सकता है, चांदी का पुराना हो थोड़ा काला हो और कढ़ाई का नया बनाया हुआ हो, कैसे पता चलेगा? कि उसको पछाड़ेंगे गुजराती में हमारे खखड़ा, वैसे उसके रणकार से पता चलेगा कि ये चांदी का है ये कढ़ाई। दिखाओ में तो बढ़िया है, नकली है वो बढ़िया है, ऐसे दोनों के कहने के जो का जो अंतर ध्वनि जिसको अंडरस्टोन कहते हैं अपन, अलग अलग होता है। एक असल है एक नकल कहने तो कहते हैं है। असल में कहते हैं तो भिन्न अनुभव करके कहते हैं, तो उसमें भिन्नता का एक रणकार होता है। तो वो टोन जो अभिन्न भाव अनुभव कर रहे हैं उसमें आएगा कहाँ से? आएगा तो नहीं। ये टोन की जो परख है, परख करने वाले जानते हैं, चीज रही परख की आखिर में बात तो बात है, परख से पता चलता है। क्या पढ़ते
हैं?
आत्मस्पर्शी होती, इसलिए तो टोन अलग पड़ता है। तो बात तो चली थी अपूर्वता के, ज्ञानी की वाणी में अपूर्वता कैसे लगे, कि जब वो आत्मस्पर्श की वाणी आती है और दूसरे मुमुक्षु सुपात्र आत्मा को स्पर्श करती है, उसको अंदर से उसको जागृत करती है और उसको लगता है कि अनुभव सहित पना है उसमें और अपने में भी अपूर्व भाव पैदा होने लगता है। तो अपने भाव के अपूर्वता से आरोप किया जाता है कि वाणी भी अपूर्व है, वचन भी अपूर्व है, ऐसा बोला जाता है। बात तो यहाँ से होती है। तो 700-690 में तो उनसे लिया है, आशय भेद है, ऐसा कर दिया है। ज्ञानी की वाणी और अज्ञानी की वाणी में आशय भेद है। गुजराती में 456 उसमें ज्ञानी तीसरा पैराग्राफ है। ज्ञानी की वाणी पूर्वार पर अविरोध आत्मार्थ उपदेशक, आत्मा का जो प्रयोजन है उसका उपदेश करने वाली, अपूर्व अर्थ का निरूपण करने वाली अपूर्वता का बात और अनुभव सहित बना होने दूसरे आत्मा को सतत जागृत करने वाली होती है। इतने गुण होते हैं तो दूसरों को इसकी असर पहुंचती है। अज्ञानी की मानी की इतनी असर नहीं पहुंचती क्योंकि खुद को ही असर नहीं है, वो रस नहीं है। ये बात क्या है, आपस के रस की हो, जो अपने आत्मा में विभोर होकर के ज्ञानी बोलते हैं तो उस रस का असर पड़ता है सुनने वाले को, उसको वही रस जागृत होता है। भाव अपूर्व होने से अपूर्वता मालूम पड़ता है। ज्ञानी की वाणी में पुरवार पर विरोधता नहीं है, ये सबसे बड़ा गुण है। पदार्थ में परस्पर विरुद्ध धर्म है, नित्यत्व और अनित्यत्व, शुद्धता और अशुद्धता, एकता और अनेकता, भेदता और अभेदता, लेकिन पदार्थ दर्शन होने के कारण से सभी धर्म को एक साथ जानने वाला ज्ञानी विरुद्ध धर्म को भी अविरुद्ध रूप से कह सकते हैं, बता सकते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है ज्ञानी के मान। और अज्ञानी को पदार्थ दर्शन नहीं होना चाहिए, उनको जगह जगह कल्पना करनी पड़ती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जीव ऐसा होना चाहिए, लेकिन खुद को तो पदार्थ दर्शन नहीं। तो वाणी में कहीं न कहीं विरोध आए बिना वो बात लिया, बहुत सी बात लिया है, पूरा पत्र है। ज्ञानी और अज्ञानी की वाणी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अच्छी बातें आई है। पहले से नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो एकांत कर देगा। देखिए स्वाध्याय में वो चर्चा वहाँ चल रही है, बात एक समझने लायक है कि किसी को लगता है कि हमारी बात सही है पर बात सही भी होती है, फिर भी यथार्थ नहीं होती है। इसका कारण क्या, इस पर चर्चा चलती है, इस मुद्दे पर चर्चा चलती है। बात सही है पर बात सही होने पर भी यथार्थ नहीं है, इसका क्या कारण है। वचन देने में फर्क पड़ता है, किस बात को कितना तूल देना, ये भी एक समझदारी की चीज है। जैसे आत्मा में अनंत गुण है तो गुण भेद भी है, और अनंत का एक रूप पदार्थ से द्रव्य की अभेदता भी है। अब गुण भेद है वो भी सत्य है, पर अभेदता है वो भी सत्य है। दोनों बात तो सही है, जो भेद प्रभेद में जाता है जिसका भजन, वो अभेद को अनुभव नहीं कर सकता, और भेद को जान करके भी जो अभेद पर जिसका भजन जाता है वो अनुभव होता है, क्योंकि अनुभव में तो विकल्प का अभाव होता है। निर्विकल्प दशा को तो भेद पड़खा ही अनुकूल है, अवलंबन के योग्य है, भेद वाला स्वरूप है उसके अवलंबन को अनुकूल नहीं है, भेद से विकल्प की उत्पत्ति होती है, इसलिए भेद को कल्पना बोल देते हैं। अध्यात्म में उसको कल्पना बोलते हैं, जबकि द्रव्यान योग में वो बात सही है। वाले भी चाहिए, ठीक रख लिया
आपका
ही आविर्भाव हो रहा है, तो दोनों का आविर्भाव हो नहीं सकता, किसी एक का आविर्भाव में दूसरे का तिरोभाव है। अनादि से ज्ञान विशेष का नियाकार ज्ञान का ही आविर्भाव हो रहा है, जीव जीव में आसक्त हो रहा है, अनेक प्रकार के विभाव को परिणमन करके दुख और देश को प्राप्त करता है और परिभ्रमण करता है। इसके फलस्वरूप ज्ञान सामान्य का ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव करता है तो ज्ञाकार ज्ञान तिरभूत हो जाता है, गुण हो जाता है, कवरेज छूट जाता है और निराकुल शांति का अनुभव होता है, उस आत्म शांति का। तो इसलिए बात वो निकली कि सही बात होने पर भी वो तुल देने योग्य है कि नहीं, मुख्य करने योग्य है कि नहीं है, उसका भी विवेक करना पड़ता है। बात सही है इतना नहीं चलता है, इतना दृष्टांत ले रहे हैं, सब थोड़ा उपयोगी है हमारे भूमिका में, इसलिए ले कि हम दूसरे मुमुक्षु का दोष हमको देखने में आता है। तो बात तो सही है कि उसमें दोष तो है, ये बात गलत नहीं है, पर ज्ञान का स्वभाव जानने का होने से वो जानता भी है, लेकिन वजन देना कि नहीं देना वो एक विवेक करने की चीज होती है, कि दूसरों का दोष देखने में आए तो भी हमको वजन नहीं देना है। अगर दोष पर ही वजन देना है तो अपने दोष पर वजन दो, और दूसरे का अल्प गुण भी देखने में आए तो उस पर वजन रखो, और अपने में अधिक गुण दिखने में आए तो उसको दबाओ छिपाओ। ऐसे न्याय का विषय थोड़ा अटपटा है, ऐसे न्याय होता है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान अवश्य होता है, बात सही होने पर भी अपने को नुकसान होता है। किस लिए? से एक तो हमारी अनादि से दोष दृष्टि तो है ही, पर हमारे दोष दृष्टि से दूसरे को दोष दिखने से हमारे दोष दृष्टि को हम बढ़ावा दे दिया, इसका ख्याल हमको नहीं रहा। ये नुकसान तो हमारे खाते में आएगा, हमारे खाते में आएगा। तो अपने को तो अपना प्रयोजन देखना, हाँ नुकसान देखेगा तो फर्क हो जाएगा, एकदम फर्क हो जाएगा। और तो मनुष्य सर्वगुण संपन्न तो होते ही नहीं, मनुष्य माने गुण दोष का मिश्र रूप जो पुतला होता है उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य एक पुतला है जिसमें गुण दोष दोनों का मिश्रण होता ही है। अगर सर्वगुण संपन्न होता तो देव बोला जाता उसको, सर्वज्ञ देव तो वितराग है, सर्वगुण संपन्न है, कोई अवगुण उसमें नहीं है। मनुष्य तो या साधक भी होता है तो गुण दोष सहित ही होता है। अब किसको, दो परस्पर विरुद्ध पहलू है तो किसको मुख्य करना किसको गौण करना, के बाद का विवेक हमें करना पड़ता है। और वो हमारे लाभ के कारण से हमारा लाभ नुकसान हमको समझना है। आजकल ये चर्चा बहुत से पॉइंट आते हैं तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो क्योंकि यहाँ भूल होती है, अपनी सच्ची बात है उसके सच्चापन पर जो वजन जाता है तो इस प्रकार की भूल हो जाती है। यहाँ अपने चलते प्रकरण में जीव का जानने वाला जो गुण है उस लक्षण से जीव जड़ पदार्थ से भिन्न जाना जाता है। और जड़ पदार्थ से भिन्नता जाननी अनुभव करनी ये हमारा मुख्य प्रयोजन भी है, ये हमारा खास प्रयोजन है। क्योंकि ये गलती हम अनादि से करते आ रहे हैं। ये भी थोड़ा जो टोन है, टोन की बात चली वो तो यहाँ मिलता है। अत्यंत अनुभव का कारण ऐसा नायकता लक्षण यहाँ से टोन मिलता है। नायकता जड़ चेतन से भिन्नता भी करता है और अपना अनुभव का वो अत्यंत कारण है। अत्यंत इसलिए है कि ज्ञान में जो अनुभव करने का, वेदन करने का गुण है, धर्म है, वो हमेशा हमेशा एकांत शुद्ध रहता है। जैसे जीव का मूल स्वरूप एकांत शुद्ध है और ये सम्यक एकांत का विषय है, वैसे ही ज्ञान में जो अनुभूति है, वेदन है, वो हमेशा एकांत शुद्ध रहता है। क्योंकि उसमें कोई दूसरे के असर नहीं पहुंचता। ज्ञान विशेष का संबंध नियो के साथ है, तो जैसा गे ऐसा ज्ञान। यहाँ काला रंग है तो काला दिखेगा, पीला है तो पीला दिखेगा। लेकिन ज्ञान सामान्य जो वेदन रूप है वह किसी के कोई असर नहीं है, वो एकांत शुद्ध ही रहता है। निमित्त संबंध वहां नहीं है, ज्ञान का निमित्त नैमित संबंध वहां नहीं होता, इसलिए यहां से अपना शुद्ध स्वरूप अनुभव गोचर रूप से पहचाना जाता है। इसलिए ये जो अनुभूति है ज्ञान की, जो वेदन है, यहां से अपना शुद्ध स्वरूप, मूल स्वरूप अनुभव गोचर रूप से पहचाना जाता है। क्या स्वरूप भी निर्विकल्प है और ज्ञान वेदना भी निर्विकल्प है। ज्ञान का स्पष्ट संबोधन निर्विकल्प और स्वरूप भी निर्विकल्प है, इसलिए निर्विकल्प स्वरूप की पहचान इसी लक्षण से होती है। भिन्नत्व भी यहाँ से होता है और पहचान भी यहाँ से होती है। एक साथ दो बात एक ही धर्म से होती है, एक ही लक्षण से होती है।
मेरी गर्मी जब लगता है तो अनुभव में ऐसा ही आता है कि मेरे को ठंड लग रहा है, मेरे को गर्मी लग रहा है, वहां पर भिन्न अनुभव कैसे समझ?
वो भ्रम से लगता है, वास्तव में जैसे ये ठंड के दिन चल रहे हैं। अब आप देखिए भीतर में जांच करिए, तलाश करिए कि अपना ज्ञान कितना ठंडा हुआ। ज्ञान के अनुभव को पकड़ करके देखिए, कितना शर्त है हमारा। फिर से ज्ञान में ज्ञानानुभव हो रहा है सबको, आभान गोपाल सभी को। इस अनुभव को पकड़ करके देखिए कि ज्ञान ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। वातावरण में ठंडक है वो मालूम पड़ती है, लेकिन मेरा ज्ञान ठंडा नहीं हुआ। बहुत तीव्र ठंडे होने पर भी ये अनुभव हो सकता है, पर ये प्रयोग करना चाहिए। ये प्रयोग का विषय है, लगना नहीं लगना वो प्रयोग का विषय है। भ्रांति से हमको लगता है कि ठंड हमें लगती है, वास्तव में ठंड गर्मी गर्मी जो भी है, ठंडी गर्मी जितनी भी है, वो जानने की चीज है, अनुभव करने की चीज है ही नहीं। ये तलाश करने की चीज है, होता है ज्ञान ठंडा होता है कभी, टेम्परेचर ज्ञान का आता है कभी नहीं आएगा, फिर कैसे लगा? भ्रम से लगा
होता होता एवरेस्ट पे चढ़ते जब खतरा होता है, उनको विवेक नहीं होता, अगर ज्ञान ठंडा हुआ होता तो अब क्या करना, ये विवेक नहीं उठ पाता।
होता ही नहीं,
नॉर्मल ढंग से, नेचुरल ढंग से फंक्शनल रहता
है। कल ज्यादा ठंडी थी पर बोलता है, दार्जिलिंग में तो इससे भी ज्यादा होती है। अपना स्टेट में देखो तो कलकत्ता से ऊपर हिमालय में दार्जिलिंग उसमें ज्यादा भी बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वहाँ भी अपने ढंग से रहते कि नहीं, वो कि नहीं रहते, क्या खाली हो जाता है क्या? किसी का ज्ञान तो ठंडा नहीं हुआ, वहां भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। जो बात है वो शरीर की है, सर्दी गर्मी लगती है, शरीर की अवस्था में फेरफार होता है, ज्ञान की अवस्था में नहीं है। जिसको मालूम पड़ा कि सर्दी लगी शरीर को, उसको सर्दी नहीं लगी है। लगी है क्या? इस शरीर को जुखाम हुआ, वो जानने वाले को हुआ जुखाम क्या?
जानने वाले को
नहीं होता, कोई हिम्मत करना है और ऐसा अत्यंत अनुभव का कारण कोई है तो वो ज्ञान है, वो अत्यंत अनुभव का कारण है। एकदम अनुभव का कारण है, भिन्न अनुभव हो सकता है इससे।
मुझे
तो हर हालत में अभिन्नता मान रखी है, जान रखी है, तो बड़ी गलती हुई है और वही सभी दुख का कारण हुआ है। तो दुख से छुड़ाने के लिए ये उपदेश भी विज्ञान की प्रधानता से कर रहे हैं। ज्ञान साइंस की प्रधानता है, देखो दोनों पदार्थ ही अलग अलग है, दोनों पदार्थ के गुणधर्म अलग अलग है, और जहाँ जीव का अस्तित्व है वहाँ जड़ का अस्तित्व नहीं, जहाँ जड़ का अस्तित्व वहाँ जीव का नहीं। तो जहाँ मेरा अस्तित्व नहीं है, ऐसे शरीर से लेकर के कुटुंब मकान आदि जो भी दूसरे पदार्थ हैं जो मेरे दिखते हैं, अस्तित्व तो तेरा है नहीं, कैसे दिखते हैं? यहाँ अपना अस्तित्व नहीं है, वहाँ अपनापन कैसे किया? कल्पना से किया तो इसका फल दुख है, कल्पना का फल दुख है। अब तुझे दुखी होना है या नहीं होना है तुम सोचो। ये वस्तु का स्वरूप खुला कर दिया है, ज्ञानियों ने वस्तु का स्वरूप को खुला करके रख दिया है।
वेतन होता है तो मोह के कारण होता है, वेतन में जन्म कला भी होता है और वो वेतन जो
मोह के कारण से धन वेदन नहीं हो रहा है, धन ज्ञान नहीं हो रहा है, अभिन्नता का वेदन और ज्ञान हो रहा है। तो ऐसा है नहीं, वस्तु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। हीराना जी का हाथ कट गया था, तुम थे वहां एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग यही पूछते थे कि हाथ कट गया तो आप में से कुछ कट करके कुछ पोर्शन अलग हो गया है, ऐसा अनुभव होता है क्या? उन चर्चा हम करते थे फर्स्ट एड के टाइम में, उसको जो फर्स्ट एड मिल रहा था वो बांध में थे, हम यही पूछते थे कि आप पहले यहाँ तक था, आधा घंटा पहले तो आपको अपना हाथ दिखता था कि मेरा हाथ इतना है, अब इतना ही है, ये पोर्शन नहीं है, तो मेरे में से कुछ कट गया, ऐसा कोई अनुभव में आता है क्या? नहीं, मेरा अनुभव तो बोलता है कि मेरा हाथ पूरा है, ऐसे बोलते थे। क्या बोलते थे? मेरे अनुभव में आता है कि मेरा हाथ पूरा है, अंगूठा इधर है, उंगली इधर है, वो है, वो उंगली अंगूठा इस पर ऐसा होता है, ये सब ऐसा करते थे, क्योंकि हाथ तो था ही। तो अत्यंत अनुभव का कारण तो ज्ञान है, हाथ नहीं है, आदमी है, उंगली अंगूठा सब है ना, मालूम पड़ता है, सब इधर मालूम पड़ता है, पहले तो यहाँ तक मालूम पड़ता है। वो प्रदेश संकुचित नहीं हुए थे, हाथ कट गया लेकिन हाथ के प्रदेश संकुचित होकर के इधर नहीं गए थे, तो यहां तक मालूम पड़ते थे। जिसका हाथ था नहीं, उद्गल हाथ तो नहीं था, शरीर वाला हाथ नहीं था, तब ये संकुचित होकर के इधर आ गया, तो इधर मालूम है कि ये अंगूठा है, उंगली है, वो है, सब मालूम पड़ता है। मतलब क्या है कि शरीर कटने से आत्मा कटता नहीं, ये अत्यंत अनुभव का कारण है। इनको तो आसानी से भेद ज्ञान होना चाहिए। उसको जो एक्सीडेंट हुआ है उसको तो आसानी से भेद ज्ञान होना चाहिए। अभी भेद ज्ञान का अच्छा से अच्छा अनुभव का प्रयोग है, जो बहुत अच्छा प्रयोग है, जैसे भिन्नता का प्रकट अनुभव है। ऐसा अनुभूति स्वरूप को श्री तीर्थंकर ने जीव कहा है। अनुभूति स्वरूप ऐसे पदार्थ को श्री तीर्थंकर ने जीव कहा है। यहां से जीव जाना जाता है, तीन काल तीन लोक में जीव को जानने के लिए ज्ञायकता ही एक लक्षण है। दूसरे लक्षण से वो भिन्न पहचाना नहीं जाता, भिन्न जाना नहीं जाता। और आत्मज्ञान होने के पहले पहचान होती है, सीधा आत्मज्ञान किसी को नहीं होता, इसके पहले पहचान होता है, पहचान होने के बाद अनुभव ज्ञान होता है। और वो पहचान भी अनुभवांश से होती है, ज्ञान एक ही साधन है, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। चार पंक्ति में दो बात बता दिया है कि एक तो जड़ पदार्थ आदि से भिन्न पड़ता है ज्ञान लक्षण से, और एक ज्ञान लक्षण से अत्यंत अनुभव का साधन मिलता है। अत्यंत अनुभव का साधन ज्ञान ही है, दूसरा कोई नहीं है। और इससे भिन्न ज्ञान में आत्मा की पहचान होती है, और पहचान होने से उसमें जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी ताकत है, जितना भी सामर्थ्य है, उसका विश्वास आता है, और उसका विश्वास होने से ज्ञान बल पैदा होता है। वो ज्ञान बल आत्मज्ञान का कारण बनता है, अनुभूति का कारण बनता है। इस तरह से जो ज्ञायकता लक्षण वाली बात है, बहुत गहराई से समझने योग्य है, और इतनी गहराई तक जाना चाहिए कि उसका प्रयोग करके पहचान हो जाए। सब तो बात बराबर है, तो वो पहचान कराने के लिए वो बात है, लक्षण है वो पहचान कराने के लिए, पहचान हो जाए उतनी गहराई में जाना चाहिए। निधान दर्शन में के लिए ना तीसरा प्रकरण में वो बात लिया है, वो प्रयोग कैसे करना, छप्पनवा पाना ऊपर से निधान दर्शन में के लिए जो प्रकरण थे मैं छप्पनवा पाना ऊपर प्रयोग के विरुद्ध था, इसे थोड़ा विस्तार के लिए उसी कर लो, पूछना फिर ले
पॉइंट ऊपर से रखा।